बजरंग बली तुम जैसा भक्त न दूजा पाया। जय बजरंग बली तुम जैसा भक्त न दूजा पाया। राम लखन सीता अंतर में सीना चीर दिखाया, सीना चीर दिखाया। बल दो भक्तों में तुम हो सबसे बलशाली, रावण की लंका में तुमने पल में आग लगा डाली, संजीवन बूटी का पर्वत, संजीवन बूटी का पर्वत तुमने सहज उठाया। राम लखन सीता अंतर में सीना चीर दिखाया, सीना चीर दिखाया।
ओम शांति। तो आज का विषय है अनुमान का हनुमान, अनुमान का हनुमान। भक्ति मार्ग में हनुमान के लिए भक्त लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी प्रसन्न होता है, जितने भी देवी देवता हैं सबसे जल्दी प्रसन्न हनुमान होता है, ऐसा सोचा जाता है। और हनुमान को याद करने से कहा जाता है कि अगर घर में हनुमान चालीसा रखी है तो हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन अब ये ऐसे नहीं करना, आप जाके हनुमान खरीद के हनुमान चालीसा घर में रखो। तो हम खुद ही सब कौन है, हनुमान है। लेकिन ज्ञान मार्ग में चलते चलते कहीं ना कहीं अनुमान का हनुमान ना बन जाए, क्योंकि अनुमान लगाना एक बीमारी है जो हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर देती है। देखा जाता है संसार में जो अनुमान लगाते हैं वो मन के रोगी होते हैं। लेकिन अनुमान दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो वो उनको भी अनुमान के आधार पर कुछ रचनात्मक शिक्षा अगर देनी होती है तो कुछ ना कुछ उनको चीज दी जाती है या ऐसे दिया जाता है कि आप लिखिए, जैसे मेरी गाय। अब पहले वो अनुमान, अब जिसके पास जो शहर में बच्चा रहता है उसके पास गाय तो होगी नहीं, लेकिन वो उसके ऊपर अनुमान लगाएगा, सब कुछ उसके ऊपर लिखेगा तो वो रचनात्मक सोच विकसित होती है उससे। लेकिन दूसरा है यहां अनुमान अर्थात शक, शंका, दूसरे के प्रति जो डॉट संदेह जो है नहीं है वो, लेकिन हम सोचते रहते हैं। एक तो बीमारी भी हो सकती है, वंशानुगत भी हो सकती है, या फिर बाबा कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करो। तो होता यही है अधिकतर, अगर हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं तो जैसे हम अपने पुरुषार्थ के लिए खड्डा खोद देते हैं। अगर मुझे किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा है तो पहले तो मेरा दृष्टिकोण उस आत्मा के प्रति अच्छा था, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया और उसने जो कहा वो भी किसी के कहने पर ही कहा, उसने देखा नहीं है, कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है उसके पास, सत्य नहीं है, लेकिन उस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके उसने हमको कह दिया और हमने भी वो मान लिया कि हो सकता है, और हमको वो अनुमान की बीमारी लग गई। अब वो अनुमान से कितना नुकसान होगा, वो छोटी छोटी बातें चिंतन करते करते जैसे पहाड़ हनुमान के समान पहाड़ बना देंगे बातों का। उस अनुमान के पीछे क्या क्या नुकसान होते हैं वो हम देखेंगे। अगर हमने उस बात को सत्य मान लिया, नहीं भी माना, अगर स्वीकार कर लिया, तो पहली बात उसमें हमारा समय चला जाएगा। हाँ जी, हाँ, श्वास से क्या दम भी निकल जाएगा वो धीरे धीरे। तो पहले तो हाँ बिल्कुल सही बोले आप, तो हमारा समय चला जाएगा, कितना नष्ट हो जाएगा समय। दूसरा, संकल्पों की एनर्जी धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी। कहाँ हमने पॉजिटिव संकल्पों का भंडार पकड़ के रखा था, हम चिंतन कर रहे थे, उस पर हमारा पुरुषार्थ बढ़ रहा था, और हमने उस बात को छोड़कर उस बात को पकड़ लिया, तो हमारे संकल्प भी वो भी नेगेटिव ऊर्जा से भरने जा शुरू हो जाएंगे। और फिर वातावरण कैसा बन जाएगा, जिस वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए भगवान ने हम सबको निमित्त बनाया है, उसी वातावरण को शक्तिशाली बनाने के बजाय हम उसको कमजोर बना रहे हैं, निर्बल बना रहे हैं, उस वातावरण में नेगेटिव ऊर्जा फैला रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन फैला रहे हैं, तो वातावरण कैसा हो जाएगा। फिर उस बात को हम तहकीकात करने के लिए किसी और को भी ढूंढेंगे, क्या उसने जो बात कही थी क्या वो सत्य है, तीसरे को पूछेंगे। अब वो तीसरे को उसको उसकी बात का पता नहीं था, लेकिन हमने उसको और आगे बता दिया, भले उसने पहले वाले ने कहा कि तुम किसी को बताना नहीं, लेकिन हमारा भी तो कोई ऐसा मित्र होगा कि उसको बताएंगे तुम किसी को बताना नहीं। तो यहां से शुरू होगी, और चैन करते 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 वापस तो और सोचेंगे पता तो मुझे केवल मुझे या किसी को पता नहीं होगा, और पता सबको ही होता है वो। तो उस बात को फैलाने के लिए हम कितना बड़ा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, कितना बड़ा हम पाप के भागी बन जाते हैं, तो उसका फिर पाप भी चढ़ जाता है हमारे सिर पर। फिर उसका होता है, अगर हमने वो बात सुनी है तो दूसरों के मन में भी, जो दूसरा पहले सोचता था कि ये तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, अब उसने देख लिया कि ये तो बात में हाँ मिला रहा है, तो उनके मन में भी हमारे प्रति एक रेस्पेक्ट कम हो जाती है कि ये भी पुरुषार्थ ऐसा चल रहा है। तो सामने वाले में जो हमको मंगुसा भरने के निमित्त बनाया, तो हमने उसको मंगुसा उसमें भरने के बजाय हमने और उसको कमजोर कर दिया, तो उसके मन में भी क्या हो गया पैदा, वो भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के कारण कितना ये हो गया। फिर धीरे धीरे सभी के मन में यही आएगा, ये तो है ही ऐसे है। तो माना एक छोटी सी बात कहाँ शुरू हुई और कहाँ जाके हो उसे पूरे ब्राह्मण परिवार में या कहीं भी या अधिकतर घरों में जो होता है, तो कितनी नेगेटिव ऊर्जा फैला दी। और घरों में भी क्या होता है, रिश्तों में दरारें पड़ जाती है, बात होती कुछ नहीं है, आपस में पारदर्शिता नहीं है, तो छोटी छोटी बात जो पूरे परिवार को जैसे खंड खंड कर देती है, रिश्तों में दरारें पैदा होती हैं, पारिवारिक सामाजिक दूरियां बढ़ती जाती हैं दिन प्रतिदिन। तो वो छोटी छोटी बातें का अनुमान लगाते 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 हनुमान के जैसा बन जाते हैं। अब उनसे छूटना कैसे है? तो बाबा ने तो हम सबको कितनी सारी युक्तियां बताई हैं। अगर वो जो हमारे अंदर अनुमान का कीड़ा बैठ गया है, जो शक का कीड़ा है, जो कीड़ा धीरे 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 हमें अंदर ही अंदर खा रहा है, हम अनुमान के शिकार हो चुके हैं, तो हम मुक्ति कैसे पाए? क्योंकि अनुमान के जाल में फंस गए एक बार तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बाबा ने कहा अनुमान के बजाय हनुमान बनो। हनुमान के सुना ना गीत में कि हनुमान की क्या क्या विशेषताएं हैं, हनुमान बजरंग वाली ताकतवर है वो। तो हनुमान के हृदय में कौन रहता है? श्री राम, श्री सीता। हाँ, सीता दोनों ही रहते हैं। देखा आपने?
नहीं, उन्होंने
अच्छा उन्होंने बताया। तो वास्तव में ये जो अनुमान है, अब वो जो हनुमान बनाया संसार वालों ने, ये भी तो अनुमान के आधार पर ही बनाया ना। अब वो था थोड़ा नहीं ऐसे, लेकिन वो अनुमान जो था संसार को थमाने के लिए है ना। अब रावण को था थोड़ा नहीं है, लेकिन अनुमान के आधारित ही वो रावण क्रिएट कर दिया। और वो जैसे अनुमान, जैसे रावण का कोई बोलता है या विचार हमारे बुद्धि में आता है, तो वो एक सेकंड में पूरे रावण की हिस्ट्री हमारी बुद्धि में बैठ जाती है। अनुमान की बीमारी भी ऐसी है, अगर किसी के बारे में हमें कुछ कहा गया कि ऐसे है, तो उसकी सारी हिस्ट्री हमारे मन में और एक ही सेकंड में इतने सालों के अंदर उसकी नेगेटिव ऊर्जा सारी अंदर में समा जाएगी। तो अनुमान की बजाय हमको हनुमान कैसे बनना है? तो हनुमान के दिल में क्या होता है, राम और सीता दिखाते हैं। तो हमारे दिल तक तनशीन, बाबा कहते सच्चे दिल पर साहब राजी, हमारा हृदय इतना शुद्ध है, पवित्र है कि हम निराकार राम को अपने हृदय में निवास दे सकें, अपने हृदय में बसा सकें, क्या उसकी बातें, उसकी जो उपकार हैं वो हमारे मन ही मन दिल ही दिल के अंदर गूंजते रहते हैं, तो उसकी तरह हनुमान की तरह हमको भी अपने दिल में एक सच्चे हनुमान, सच्चा हनुमान तो शिव बाबा ही है, वो वाला तो हनुमान का हनुमान है, तो हमको उसको बसा के रखना है। तो उसके हृदय में श्री राम होता है, हमारे हृदय में निराकार राम शिव बाबा हमारे हृदय में बसा रहना चाहिए। और उसके हाथ में क्या दिखाते हैं? गदा। गदा कौन सी? कल बाबा ने गदा के बारे में क्या बोला था? वो दूसरा गदा था, वो गदा और घोड़ा बोला था, बोला मैं उसमें थोड़ा नहीं आऊंगा। गधा, हाँ वो गधा है, तो वो प्रोनाउंसिएशन में होता है, कोई समझने वाले तो ऐसे होते हैं, तो वो हमारे जैसे होते हैं, तो वो तो ठीक है, हनुमान की बात चलेगी तो वो गधा वो ही समझ में आएगी, दूसरा गधा तो समझ में नहीं आएगा। तो ज्ञान की गधा हमारे हाथ में हमेशा रहनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर वो नहीं है तो माया हमारे पर प्रहार कर देगी, माया हमको अपना बना लेगी, कच्चा खा जाएगी, निगल जाएगी, अजगर मुंह खोल के बैठा हुआ, और अजगर कैसे खाता है, पूरा निगल जाता है, वो हड्डियां तोड़ देता है एकदम, हड्डी पसली सब तोड़ देता है। अगर अजगर आ जाए सामने तो क्या करना चाहिए? अजगर को पकड़ने का तरीका क्या है? उसके एक ही कमजोरी होती है, वैसे अकेला व्यक्ति तो उसका सामना मुश्किल कर सकता है, लेकिन उसकी कमजोरी जो है मुंह होता है उसका, अगर उसके मुंह को पकड़ लिया जाए और उससे दूरी बना जाए तो हम बचा जा सकता है, नहीं तो अगर अजगर जब कुंडली मारता है तो लपेट के अपने मुंह को दूर रखता है ताकि उसका मुंह हमारे हाथ में ना लगे, पकड़ा हुआ है। तो माया अजगर की तरह बैठी है मुंह खोल के, तो हमको अपने हाथ में ज्ञान की तलवार खड़ग हमेशा हमारे हाथ में, हमारे हाथ में वही, उसी के अनुसार कर्म होते रहे, उसी के अनुसार हमारा चिंतन चलता रहे, तो वो होना चाहिए। और हनुमान बड़ा निर्माण चित्त होता है, बड़ा नम्र चित्त है, वो नम्र बहुत बहुत बलशाली है, और उसके अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं, अपने को छोटा भी कर लेता है तो अपने को बड़ा भी कर लेता है। जब लंका बहुरूपी है, लंका में प्रवेश किया तो छोटा बनकर सीता को बचाया और बड़ा बनकर लंका को जलाया, पूछ को आग लगा कर पूरी लंका जला डाली, तो ऐसे अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। तो अगर ज्ञान का भंडार हमारी बुद्धि में मौजूद है तो कोई भी मेथड से हम उस ज्ञान को अप्लाई करके समस्याओं को पार कर सकते हैं। अगर कहां छोटा बनना है, इसलिए बाबा कहते हैं सार को विस्तार और विस्तार को सार में समाने की कला, ये हमारे में आने होनी चाहिए। तो कहां सार का विस्तार करना है, कहां विस्तार को सार में समाना है, अर्थात जो भी कहीं कोई भी बातें हो रही है तो उन बातों का हम अनुमान ना लगाते हुए हमें उसमें से सार ढूंढना है, और हमें ये देखना है अगर वो अनुमान वाली बातें हैं तो उस वातावरण को परिवर्तन करने के निमित्त हम कैसे बने, अगर दूसरे अनुमान में डूबे हुए तो उनको भी हनुमान कैसे बनाए, अनुमान का अनुमान नहीं सच्चा अनुमान कैसे बनाए, तो वो देखना है। तो हनुमान की तरह छोटा भी बनना है और बड़ा भी बनना है। और हनुमान ने अपने मुंह में किसको रख लिया था? सूर्य को ऊपर से पकड़ के बॉल समझ के खा लिया। तो ऐसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा रोज ये अनुभव करना है कि ऊपर से पकड़ के अपने मुंह में रखे, अर्थात मुंह में ज्ञान, मुंह से ज्ञान सूर्य के, ज्ञान के बाण, ज्ञान के शब्द, ज्ञान की धारा, ज्ञान की गंगा, ज्ञान का झरना, ज्ञान की बरसात होती रहे। तो उस ज्ञान सूर्य को अपने अंदर भी समा लेना है, हप करके रख, निकल ना जाए कहीं बाहर, अगर वो निकल गया तो दूसरे तो बहुत सारे प्रवेश करने के लिए बैठे हुए मौका देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कभी अकेला होता है, अकेला होती है तो प्रवेश करके उसके ऊपर अपना अतिक्रमण कर ले, कब्जा कर ले। तो ये देखना है कि हनुमान की तरह हमारे सिर के ऊपर भी ज्ञान सूर्य की छत्र छाया या उसका वरदानी हस्त, उससे हमारा कितना प्यार है, उसके हमारा उसके जो कर्तव्य हैं उनके प्रति हम कितना सजग होकर अपना टाइम समय संकल्प श्वास खजाना दे रहे हैं, जो इतने प्रकार के खजाने दिए आज बाबा ने बताया ना कितने प्रकार के, स्टार्टिंग में 9 प्रश्न है मुरली के, कौन कौन से हैं आज की मुरली के, स्टार्टिंग में 9 प्रश्न है। बाबा ने कहा मास्टर विधाता बने हो, अर्थात मास्टर विधाता बनने के 9 बातों का बाबा ने चार्ट देखा कि पहले सबसे पहले खजाने जो बाबा ने दिए वो आपके पास हैं, खजानों के मास्टर विदाता बने हो, ज्ञान के मास्टर विदाता बने हो, गुणों के बने हो, शक्तियों के बने हो, सहयोग के बने हो, है जी, रूहानी स्नेह रूहानी दृष्टि के विदाता बने हो। ऐसे 9 खजाने हैं, 3-4 और भी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है जी। सहयोग, याद की शक्ति के विदाता बने हो, दृष्टि के विदाता बने हो, हाँ, श्रेष्ठ संग के, तो उमंग उत्साह के। तो ये है कि क्या चल रहे थे अनुमान की लास्ट कौन सी बात थी, ज्ञान, मुंह में रखना उसको हमेशा। तो और दूसरा अनुमान हमेशा उमंग उत्साह में रहता है, उमंग उत्साह कम नहीं होता है, हाँ, हमेशा उमंग उत्साह, और इतना उमंग उत्साह के पूरे पहाड़ को, तो सारा पहाड़ अर्थात कोई अगर मूर्छा जी आय का वरदान, क्या वरदान है, उमंग उत्साह है। जो सदा उमंग में रहते हैं वो कौन है, नहीं उड़ती कला में उड़ने वाली तीव्र पुरुषार्थी है। कल का तो था आज्ञाकारी कौन है, हाँ स्लोगन, तो स्लोगन तो बात पूछ रहे, आज अब ठीक है वरदान ही ठीक है, हाँ कल डायमंड का था वरदान और स्लोगन था, तो मन बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करते हैं वो ही आज्ञाकारी है। अच्छा तो ठीक है, तो हनुमान कैसे रहता हमेशा उमंग उत्साह में, तो हमारा उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए, दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। और उमंग उत्साह कम क्यों होता है, क्या कारण है उसके कम क्यों होता है, एक तो हमारे लक्ष्य में दम नहीं होता है, लक्ष्य क्लियर नहीं है कि जाना कहाँ है, किधर जा रहे हो, किधर ध्यान है, ये ऐसी अवस्था बनी रहती है। तो उमंग उत्साह अगर कायम रखना है तो लक्ष्य एकदम स्पष्ट और दमदार लक्ष्य होना चाहिए, छोटा मोटा नहीं। दमदार लक्ष्य कौन कौन से हैं, वो देवता बनना बोलो वाला लक्ष्य नहीं है, वो तो उन्हें बने जाएंगे, वो तो हमारी सीट फाइनल है पक्की है, उसको कोई छीन नहीं सकता है, वो अलग बात है भले पद कौन सा मिलेगा, लेकिन अभी का क्या होना चाहिए उमंग उत्साह, क्योंकि उमंग उत्साह को देवताओं में थोड़ा नहीं, उमंग उत्साह तो अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ही आगे प्ले करेंगे जाके, तो अभी उमंग उत्साह कैसे बढ़ेगा। तो एक तो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, और हमेशा एक तो प्राप्तियां हमें स्मृति में रहनी चाहिए कि हमको क्या क्या मिला है, वो प्राप्तियों की जैसे विस्मृति है तो उमंग उत्साह भी हमारा चला जाता है, उमंग उत्साह को कोई छीन लेता है। तो उमंग उत्साह हमेशा कायम रहना चाहिए। और उमंग उत्साह कैसे होता है, सम्मान में, हाँ जी, हाँ ये है मुख्य मुख्य बात, कौन सी बताई, सुनाई दिया किसी को, नहीं तो मैं सुना देता हूँ, जो हाँ सबसे ज्यादा उमंग उत्साह तो बाबा को रहता है, आपको भी बहुत दिख रहा है, तो जो जिनको उमंग उत्साह बहुत रहता है उनके साथ रहने का है ना, माता जी को अब यहाँ आया नहीं तो माता जी की वो फोटो खिंचा लेना, भी साथ में रख लेना, फिर देखते रहना, तो उनके साथ, क्योंकि संगति का असर बहुत होता है। जैसे अगर हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट चलते हैं, छोटे मोटे चल रहे हैं, जो ठीक नहीं है, हमारी अवस्था को गिरा रहे हैं, तो हमें संगठन के बीच में बैठना चाहिए, क्योंकि जैसे 100 लोग बैठे हैं, अगर 100 लोगों के मन के संकल्प एक अच्छे सोमान में स्थित हैं और वो बहुत अच्छी अवस्था का अनुभव कर रहे हैं, अगर 100 में से चलो 50-60 भी कर रहे हैं, तो उस एनर्जी उस माहौल में बैठकर जो एनर्जी आत्मा को मिलेगी तो हमारा उमंग सब बढ़ता जाएगा, हमारे अंदर की जो अनुमान, तो वो संगति का असर भी बहुत होता है। तो संग हमें उनका करना है जो सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, ऐसा नहीं हमारा उमंग उत्साह डाउन करने वाला हो, किसी की बात को सुनाकर हमारा उमंग उत्साह कोई सस्ता थोड़ा नहीं है, इतना पुरुषार्थ करने के बाद हम क्रिएट करते हैं और कोई ऐसे सीन के लेके चला जाए, हम वो उसके वो बकरी की तरह थोड़ा नहीं है, या वो गाय की तरह थोड़ा नहीं, कोई भी बांध के लेके चला जाए, भगवान के बच्चे। तो उमंग उत्साह सदा कायम रहना चाहिए। और हनुमान की क्या विशेषता है, बूढ़ता रहता हमेशा, हल्का है बहुत, बहुत हल्का है वो, तो मन से भी हमको हमेशा उड़ते रहना है, और वो तब उड़ पाएंगे जब हमारे मन की तारें इस संसार से टूटी होंगी, जो बाबा कहते हैं सारे ज्ञान का सार देह से तो देह के सर्व संबंधों को बुद्धि से भूल, तो क्या अब हम भूले हुए हैं या पकड़ के रखा हुआ है, या एक होता हम तो भूले हुए हैं लेकिन सामने वाले ने भूला नहीं हुआ है, सामने वाला का भी तो हिसाब किताब होता है ना, तो सामने वाला भी भूल जाए तो उसको कैसे बुलाएंगे, वो कैसे बोलेगा, हम तो अपनी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो, तो वहां पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे कैसे पता चलेगा? हाँ, उससे पूछ सकते हैं कि वाइब्रेशन पहुंच रहे नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा मान लो कि उसके पास वाइब्रेशन पहुंचे और दो चार में नहीं याद नहीं कर रहा है, और फिर छह सात महीने बाद फिर याद कर लिया, तो पहुंचे नहीं पहुंचे उसकी जिम्मेवारी है। हाँ टाइम लगता है, तो इसमें धैर्यता की बड़ी जरूरत होती है, और हमको ये नहीं सोचना कि वो पूरा हो गया, क्योंकि ये पुरुषार्थ तो अंतिम दम तक चलता रहेगा, तो इसलिए लगे रहना क्या है, क्योंकि हिसाब किताब बड़े कड़े हैं। एक जल्दी किसका टाइम, कोई ज्यादा लेता है कोई कम लेता है, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा, और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि लौकिक वालों के साथ है, ज्यादा हिसाब किताब तो अलौकिक वालों के साथ है। लौकिक वालों के प्रति हमारा इतने विचार नहीं चलेंगे जितने अलौकिक वालों के प्रति चलते हैं, क्योंकि अलौकिक वाले सारे तो ज्ञान में हैं, सब समझदार हैं। और उस दिन मुरली में था, समझदार कौन है और होशियार कौन है, वो जो कम होशियार होते वो स्टूडेंट होते हैं, और जो ज्यादा होशियार होते हैं वो टीचर होते हैं। तो यहाँ जितने भी टीचर बैठे हैं वो ज्यादा होशियार हैं, और अपन लोग तो स्टूडेंट ही हैं, तो स्टूडेंट बन के रहना ठीक है। तो हनुमान हमेशा उड़ता रहता है। तो उड़ेंगे हम तब जब हम अपने मन की तार को या अपने जो हिसाब किताब को जितना क्लियर होते जाएंगे, जितना डिटैच रहेंगे, जितना इस बॉडी से डिटैच होने का अभ्यास करेंगे, तो हम हनुमान की तरह उड़ते रहेंगे। नहीं तो हनुमान की जंजीरें, हनुमान का जाल, उसमें हम जकड़े रहेंगे। इतने जन्मों से तो हम हनुमान लगाने के अच्छे अनुभव भी बन चुके हैं, अब उसको अनुभव छोड़ के, उस अनुभव को छोड़ के हनुमान बनना है। तो ये कुछ बातें थी। और अनुमान कौन लगाता है? जो निर्बल होता है, कमजोर होता है, और उससे हाँ जी हनुमान क्या जला दिया? लंका, लंका, लंका जला दिया। हाँ पूछ पूछ के पूछ को जला देने का है। हाँ नहीं ठीक बोल रहे माता जी, ऐसा उमंग उत्साह चाहिए, देख लो माता जी को देख लेना एक बार सब। तो ये निर्बलता की निशानी है। और जो व्यक्ति अनुमान बाल होता है वो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अनुमान इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। अगर कोई उसको अगर कुछ कहेगा भी, उसके हित की बात करेगा, तो भी उसको अपना अहित ही समझता है वो, कि ये मेरे प्रति उल्टा षड्यंत्र रच रहे हैं, है ना। तो और उस अनुमान में रहने के कारण अपने जीवन में दुखी रहता है, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। इसलिए इन चीजों से बाहर निकलना, अभी सभी छोटी छोटी बातों के में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय इस ज्ञान युग में छोटी छोटी बातें ग्रहण करनी है, तो हम सच्चे सच्चे हनुमान बन सकेंगे। नहीं तो वो निर्बलता दुर्बलता, मन में वही सोचने की आदत, बिना मतलब के कोई जिन बातों का लेना देना नहीं है। अच्छा किसी के बारे में अनुमान लगाया और फिर सोचेंगे ये तो बात सत्य निकली नहीं है, फिर पश्चाताप होगा अंदर में, पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा, और ये गिल्ट कॉन्शियस पैदा हो जाएगी, और फिर बार बार अगर आदत पड़ गई तो उसी बात को पकड़ के रखेंगे। इसलिए जो बीत गया सो बीत गया, फुल स्टॉप। इसलिए बाबा कहते जो भी इस ज्ञान के महामंत्र हैं वो हमेशा याद रखने हैं। वो हमको दिए किस लिए हैं? यूज करने के लिए दिए हैं, फुल स्टॉप। केवल याद करने के लिए थोड़ा दिया हुआ है, समय पर बात आती है कुछ भी हुआ फुल स्टॉप, काम खत्म। क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसको चेंज तो कर नहीं सकते हैं, भगवान भी नहीं चेंज कर सकते हैं, फिक्स है सबका। लेकिन वो फिक्स समझ के बैठ नहीं जाना है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सुख अभी है। देवता इतने सुखी नहीं है जितना हम समझते हैं, ठीक बोला। सबसे असुखी कौन है? हम। लेकिन सामने अगर सामने से कोई कुछ बोल दे तो सुख रहता है देवता जैसा? वो तब रहेगा, हाँ वो तब रहेगा जब हमने सबके प्रति शुभ भावनाओं से अपने मन को भर लिया है, सबके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण, सबके प्रति ऊंची भावनाएं, सबके प्रति हमारा श्रेष्ठ भावनाएं, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं आगे बढ़ाने की हमारे मन के अंदर वो जैसे मंशा में वो गहरे जा चुका हुआ है कि नहीं सभी हम एक भगवान के बच्चे हैं, एक परिवार की तरह हैं। तो परिवार की तरह तो किसी के प्रति हम ऐसा वैसा कैसे सोच सकते हैं? जैसे हाथ की उंगलियां हम अलग अलग थोड़ा नहीं करेंगे, इनको मल्लम पट्टी करेंगे। इसी तरह परिवार तो ऐसा ही है ना, इसलिए बाबा कहते हैं मेरा लास्ट बच्चा भी नैनों का नूर है। और अगर हमारे सामने कोई आ जाए ऐसा कैसा, तो हम क्या बोल देते, वह तो है ही ऐसा जिसको भगवान ने चुना है और उसके हम उसके ऊपर लगा रहे आरोप प्रत्यारोप, ये तो है ही ऐसा है, तो क्या भगवान की चुनने में गलती होगी कोई? लेकिन हम तो कह देते ना तो ऐसा ही है, तो मना हम उसकी श्रीमत के भी विरोध में चल रहे हैं, जैसे उसका भी हम खंडन कर रहे हैं। तो ये मंगसा में रहने के लिए कुछ एक बातों पर ये हमने देखा, अनुमान को कैसे चुना, वैसे तो बहुत सारी बातें चिंतन हो सकता है। हाँ जी, दूसरा अगर परचिंतन सुनाता है तो सुनाने वाला सुनाएगा, लेकिन बाबा कहते सुनते हुए नहीं सुनो, अर्थात तो उसको हमको अपने अंदर में नहीं लाना है, क्योंकि सामने वाला वही सुनाएगा जो उसके मन में होगा, उसके मन में है ही नहीं बेचारे में, तो उनके प्रति भी हमारी रहम दिल की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना जागृत होनी चाहिए। लेकिन वो लंबे समय के स्वयं की साधना के बाद ही होगा। तो ज्ञान के साथ साथ तपस्या भी चाहिए, ऐसा नहीं केवल ज्ञान ही, ज्ञान तो है ही यह समझे, लेकिन ताकत योग से मिलेगी, शक्ति से मिलेगी। तो और जितना समय हम इस बॉडी से डिटैच रहेंगे तो आत्मा में ताकत बढ़ेगी। तो सामने वाला तो कुछ भी सुनाता रहेगा। विश्वामित्र अखबार थी परसों चौथ था ना मुरली में, अखबार वाले भी डालेंगे कुछ भी डालते रहे, लेकिन हम तो क्या करके रहेंगे। तो बाबा ने कहा उनको कह दो कि तुम्हारी नाक पकड़ के तुम्हें सदगति में ले जाएंगे। अब वो कितनी शुभ भावना है, भले नाक पकड़ के शुभ भावना वाली नाक वो उस तरीके की है, लेकिन है तो शुभ भावना है। जैसे माँ को बच्चे के प्रति शुभ भावना होती है, वो दवाई खाता नहीं है तो माँ क्या करती है, नाक पकड़ती है। अब नाक तो तकलीफ वाली है ना, वो तकलीफ से पकड़ी है, लेकिन उसका उसमें कल्याण समाया हुआ है। अनुमान से छूटने की दवाई के हनुमान की विशेषताओं को पकड़ के रखो, है ना। अनुमान जो है उसमें नेगेटिव ऊर्जा है और हनुमान में पॉजिटिव ऊर्जा है। अनुमान असत्य है, हनुमान सत्य। हाँ, अगर किसी ने सुना भी दिया है तो पहली तो बात है अफवाहें हैं वो, पहली तो बात है हमको उसमें जाना नहीं है, और अगर जाना भी है तो सत्य क्या है उस तक फिर पहुंचना है, और सत्य हमको पता चलेगा लेकिन उसको फिर फैलाना भी नहीं है, क्योंकि हमारा वो काम ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर सत्य पता चल गया कि फलाना खराब ही है, जिसने बोला ठीक ही बोला था भाई वो फलाना व्यक्ति खराब ही है, तो क्या हम सत्य जानने के बाद सबको बताएंगे कि खराब ही है? तो उसको सार में समा लेना है, अंदर में समा लेना है, वो उस बात को पेट में पचा लेना है, है ना। और गणेश की तरह अपने पेट को ही बड़ा रखना, नहीं हनुमान की बात चलती है, गणेश को बीच में नहीं लाऊं। हाँ, अगर हमारी शुभ भावना काम ने तो उसको सावधानी दे सकते हैं। अफवाहें तो ऑलरेडी बहुत है जी, हाँ अफवाहें बहुत फैल रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ में मस्त है तो उसको अफवाहें से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर अफवाहों के प्रति हमारा माना ध्यान जा रहा है या उसमें हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने टाइम को, एनर्जी को, संकल्पों को वेस्ट करें, अर्थात हमने लक्ष्य के प्रति हम जागरूक नहीं है, क्योंकि जाना अकेले ही है। ज्ञान तो सबको बाबा ने दे दिया है, ज्ञान की समझ भी सबको ही है, लेकिन समय पर हम यूज कहाँ कर पा रहे हैं? उन अफवाहों के वश, उन अनुमान के वश ही हम अपने जैसे जीवन को एकदम नरक की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं? जो पहले थे फिर वैसे बन गए तो फिर फायदा क्या हुआ? तो छोटा सा संगम युग है, इसमें हम सबको एक सच्चे हनुमान की तरह बन के रहना है। हाँ जी, हाँ तो कहना उसको कहा कि और कुछ कहे और थोड़ा बढ़ा दे ताकि उसमें हम प्रसिद्धि पा रहे। दूसरा, और अगर कोई, हाँ और अगर कोई अफवाह फैला भी रहा है तो, हाँ तो वास्तव में वो पूछने भी जाएंगे हमारा टाइम तो जाएगा ना, तो उसमें जाने का भी नहीं है, क्योंकि समय अभी ऐसा आ रहा है कि, हाँ और जो जिसने बोला वो खुर्रात आदमी हो तो, बहुत खुर्रात हो तो क्या करेंगे फिर, और उसकी, हाँ ये बात है, हमें अपने इस पर कायम रहना है, वो कुछ भी करता रहे, क्योंकि बाबा ने कहा अंत में तो सारे माया चारों तरफ से बाहर करेगी, जिसके ऊपर हम विश्वास लंबे समय से रखते आ रहे थे वो भी हमको लगेगा कि अविश्वास उसके प्रति, उसके मन में हमारे प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है, तो और उस इसमें हमको अगर हमने उससे लगाव रखा है और उसने हमें कुछ बोल दिया तो हमें अरे मन में फिर गहरा दुख हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, अंदर में लगेगा इसके ऊपर मैंने विश्वास किया और ये भी ऐसे बोल रहा है, धोखा भी पहले नंबर पर ही है। तो ये चीज है कि हमको इन बातों में जाने का भी टाइम कहां रहा है। अब वाएं तो कोई लगाएंगे, कोई बोलेगा तुमको नींद योग में नींद बहुत आती है, उसको आती नहीं है, सबके सामने बोल दिया, तो बोलने वाला बोलता रहेगा कुछ भी बोलेगा, लेकिन हमको अपने दिल को बहुत मजबूत बनाना है। दवाई खाई हो सकती है, नहीं किसी को नींद आ भी नहीं रही है फिर भी 10 लोगों के सामने बोल दिया आपको नींद बहुत आती है तो क्या करेंगे। कहना मैं जानबूझ के सोया था, ऐसे बोल देने का, फिर आप पहले ही बात तो हमको स्वीकार नहीं करनी है अगर वो बोल रहे ना हैं जी, हाँ परवाही नहीं है किसी की बात, सच्चे दिल पर साहब राज है तो ऊपर वाले को सब पता चल रहा है। ये तो हमारी परीक्षा है कि कितना देखते हैं कितना योग लगाता है तो कितना सहन कर लेता है, क्योंकि हथौड़ियां तो लगेंगी तभी तो सहन शक्ति बढ़ेगी हमारी, बिना हथौड़ी के ऐसे थोड़ा नहीं बाबा बिठा देगा, जीवन पर साधना की नहीं और उठा के ऐसे देवता बना देगा ऐसे थोड़ा नहीं होगा। हैं नींद उनको आ रही है, बोल हमको रहे हैं वो। हाँ तो वो है कि ये सब बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। तो हनुमान की तरह सदा हल्के रहना है, मन में दिल में एक बाबा को बसा के रखना है, हाथ में सदा क्या होनी चाहिए, कौन सी गदा, ज्ञान की गदा, मशाल, ज्ञान की मशाल होनी चाहिए, और हनुमान की तरह ताकतवर महावीर पराक्रमी साहस जो हमेशा शक्तिशाली है उसके जैसे मन की स्थिति हमारा हमेशा शक्तिशाली बजरंग बदली तरह। और हनुमान को कौन सा रंग पसंद है, लाल केसरिया रंग, तो हमको लाल रंग में हमेशा रंगे रहना है। लाल रंग कहाँ होता है, परमधाम है, खून में लाल रंग होता है। ये तो बहुत जो पास में उसको आप भूल ही गए, खून में लाल रंग होता है। तो अपने अपने परमधाम को भी अपने मन में बसा के रखना है। और हनुमान की क्या विशेषताएं हैं, है? आज्ञाकारी कितना है वो, अब सेवादारी है, नम्र चित है, एकदम निर्वाण था उसमें। अभी हनुमान जी उड़ा दिए उन्होंने। हाँ अगर वो बीमारियां होती है वो डॉक्टर को दिखा सकते हैं। हाँ वो एक जन्म का संस्कार स्वभाव नहीं ना, हमारे अनेक पिछले कई जन्मों की आदतें, जैसे बताया जैसे रावण है नहीं है, अब हनुमान कब लगाया था वो द्वापर में, किसने लगाया था वो, हम सब ने लगाया होगा, आदत तो पहले से पड़ी है। हाँ हाँ थॉट लेवल पर भी होता है, फिजिकल भी होता है, थॉट लेवल पर भी होता है। अगर थॉट लेवल पर है तो इनके पास चले जाना, ये समझा देंगे सर आशीष भाई के पास, ठीक है। अगर ये सब बातें रहेंगी तो अनुमान से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। एक जगदीश भाई की क्लास है लेकिन हमने कल ढूंढे मिले, अनुमान का हनुमान कहीं तो है, कहीं तो है, उनके मुख से हमने कहीं सुना हुआ है अनुमान के हनुमान। वो बहम है। हाँ जैसे किसी की खटिया के किसी को सपने आते थे कि रोज मुझे सपने में दिखता है कि सांप ही सांप घूम रहे हैं, सांप ही सांप घूम रहे हैं, तो उसकी खटिया के नीचे बहुत सांप दिखाई देते थे, डॉक्टर को दिखा लिया, झाड़ फूंक वाले को, सबको दिखा लिया उसने, किसी से कोई बात नहीं बनी। फिर एक दिन उसका दोस्त आया दूर से, तो उससे मिला और उसने उसका समाधान कर दिया, और अगले दिन कोई सांप ही नहीं आया, तो क्या समाधान किया होगा बताओ, खटिया के पाए निकाल दिए उसने। तो वास्तव में उसको मेहनत करने, ये भी करने की मेहनत जरूरत नहीं थी, वो नीचे सो जाता, पाए क्यों निकाले। चलो ओम शांति।
जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।